भक्ति और ज्ञान दो शब्द तो सुने होंगे, इनको भी यथार्थ समझना है। भगत तो हम सब है ही, किसके? भगवान के। भगत कहा ही उसको जाता है जो हम याद करते हैं भगवान को अथवा परमात्मा को, परम पिता को। तो याद करते हैं तो याद करने वाले हो गए भगत, और जिसको याद करते हैं वो है भगवान, परम पिता, परमात्मा कहो। अभी इसमें एक बात समझने की है, फिर जो कहा जाता है भक्ति और ज्ञान, तो उसका फर्क क्या है? ज्ञान का मतलब है कॉमन तौर में, ज्ञान शब्द का अर्थ है समझ। तो समझ बहुत प्रकार की है, जैसे डॉक्टरी नॉलेज डॉक्टरी की समझ है, यानी शरीर की, जिस्म की, इस कैसे बनाना है, कहाँ से बिगड़ता है, करना है, ये डॉक्टरी ज्ञान। और जैसे बैरिस्टरी नॉलेज को बैरिस्टरी ज्ञान कहेंगे, भाई लॉ पॉइंट्स को जानता है, किसको फांसी कैसे चढ़ाए, किसको फांसी से कैसे उतारे, हाँ ये लॉ पॉइंट्स का नॉलेज ज्ञान, तो इसको कहेंगे भाई लॉ का ज्ञान, यानी लॉ पॉइंट्स का ज्ञान। इसी तरह से जो जो चीज़ का जिसके पास नॉलेज है तो नॉलेज कहो या ज्ञान कहो, परंतु जिसको जिस चीज़ का ज्ञान है तो उसको कहेंगे उसी चीज़ का ज्ञान। परंतु ये जो एक मशहूर नाम है भाई ज्ञान बिना गत नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टरी के ज्ञान बिना गत नहीं है या बैरिस्टरी ज्ञान के बिना गत नहीं है। वो कौन सा ज्ञान? ज्ञान के बिना गत नहीं है वो ज्ञान, उसी की समझ यानी उस चीज़ का नॉलेज। तो परमात्मा क्या और हम जो याद करने वाले वो कौन है और क्यों करते हैं उसको याद, उससे हमें क्या प्राप्त होना है, इन्हीं सभी बातों की यथार्थ नॉलेज को फिर ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान के बिना गत नहीं है। तो गति सदगति का जो ज्ञान है ना, उसको ही कहा जाता है ज्ञान बिना गत नहीं है। तो वो जो ज्ञान है ना, उसी का हमको यथार्थ नॉलेज चाहिए कि हम जिसको याद करते हैं वो लगता क्या है हमारा, हमारा उनका आपस में रिलेशन क्या है, हम क्यों उसको याद करते हैं, उसे हमें क्या मिलने का है, खाली याद ही करना है या याद से हमको कुछ प्राप्त होना है, जो प्राप्त होना है वो क्या प्राप्त होना है, उस प्राप्ति का भी तो हमको नॉलेज होना चाहिए ना। तो इन्हीं सभी बातों को नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। तो ये ज्ञान सहित भक्ति हो गई, तो इसको कहा जाएगा यथार्थ भक्ति। यानी तो गीता में भी है वर्षंस भगवान के कि जो मुझे यथार्थ रीत से जानते हैं, तो यथार्थ रीत से जान कर करके और मुझे याद रखते हैं उनको मैं यथार्थ प्राप्त होता हूँ। तो उनको कहा जाएगा ज्ञान सहित भक्ति को ज्ञान कहेंगे। बाकी वैसे भक्ति तो कॉमन बहुत है, जिसको जो आया जिसको जैसे आया वो ऐसे मानता को मानते चले आए हैं, तो उसको कहा जाएगा अयथार्थ भक्ति। यथार्थ भक्ति को ज्ञान कहेंगे, अयथार्थ भक्ति कहेंगे यानी अंधविश्वास में, जहाँ विश्वास हो, समझे जिसमें विश्वास हो ना तेरा उसको ही परमात्मा मान, या जिसमें तुम्हारा प्रेम हो, ऐसे कई गुरु भी हैं जो ऐसे मंत्र भी दे देंगे, या जिसमें कहेगा तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा बच्चे में प्रेम है ना तो उसको भगवान समझ, हाँ जिसमें तुम्हारा प्रेम है वो तेरा भगवान है, हाँ। परंतु नहीं, इधर परमात्मा कहते हैं मुझे यथार्थ रीति से जान कर करके तू मेरे से प्रेम लगा, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे यथार्थ रीति से जान कर करके तू मेरे से प्रेम अथवा मुझे याद कर, तब मेरे द्वारा तुमको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। बाकी ऐसे नहीं तू किसको भी याद कर तो तुमको शक्ति मिलेगी, नहीं, शक्ति मिलेगी मेरे को याद करने से, परंतु मेरे को जान करके, ऐसा नहीं किसी को भी मेरा समझ भगवान है नहीं, भगवान कहते यथार्थ मैं क्या हूँ, जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे वो भी जानना। इसीलिए तो परमात्मा ने अर्जुन को भी कहा ना मेरे को यथार्थ रीत से समझ, तो अपना बैर करके परिचय दिया ना, नहीं तो अगर कह देते तो तू जिसको भी समझ, हाँ उसको समझ कर करके तू मेरे को ही समझ, सब ये मेरे ही हैं, तो किसी को भी याद करने उसको अपना परिचय देना पड़ा ना, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, बैठ के समझाया ना तू क्या है,
कौन है, तू आत्मा है, तो उनको अपना परिचय और परमात्मा ने फिर अपना परिचय दोनों का दिया ने, अर्जुन को अपना भी दिया, तू मेरी संतान, तू क्या हो और मैं क्या हूँ, वो बैठ कर करके उनको समझाया और समझा कर करके फिर कहा, अभी इसी समझ से, इसी ज्ञान से तू मुझे याद करने से, तब तो कहा नहीं माम एकम, फिर कहा नहीं मुझ एक को याद कर, मन मना भव, ये गीता के वर्षन है, तो मन मना भव अथवा मन को अथवा बुद्धि को मेरे में लगा और मुझ एक को, माम एकम मुझ एक को याद कर। तो ऐसे तो नहीं कहा ना कि तू किसी में भी मन लगा, हा? का मुझ में, और उसको अपना बैठ कर करके परिचय दिया, समझाया। तो वो समझने की बात है नी, कुछ जब समझने की थी तभी तो परमात्मा को आना पड़ा, और उसको वैसे तो अर्जुन बड़ा विद्वान था, बड़े वेद शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़े हुआ था, पर तो उसको कहा नहीं ये सब तुम भूल, अब मैं जो यथारथ नॉलेज समझा रहा हूँ ना, उसी बातों को समझ कर करके तू मुझे जान कर करके, अपने को भी रियलाइज कर करके, तू कौन है, मैं कौन हूँ, तेरा और मेरा रिलेशन क्या है, इसी सभी बातों को समझ कर करके अभी प्रैक्टिकल मेरे साथ रिलेशन में आ। ऐसे नहीं है कि तू कोई भी आ, किसी को भी समझ कि ये परमात्मा है या ये सब रूप मेरे हैं, नहीं, मेरा अपना रूप है, मेरा अपना निवास स्थान है, मेरा अपना जो कुछ क्वालिफिकेशंस मेरी है, वो मेरी यथारथ बातों को समझ। ऐसे नहीं है सब मैं हूँ, फिर तो चोर भी मैं हूँ, डाकू भी मैं हूँ, खूनी भी मैं हूँ, सब मैं हूँ, फिर तो आ फिर उसकी माना चोरी भी मैं करता हूँ, खून भी मैं करता हूँ, सब मैं करता हूँ, ऐसी तो बात ही नहीं है ना। सब मैं हूँ फिर सब कुछ करता कराता मैं हूँ, तो फिर ये काम भी मैं करता कराता हूँ, फिर बुरा भी मैं कराता हूँ तो अच्छा भी मैं कराता हूँ, फिर तो कोई किसके कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही ना, फिर तो अच्छा बुरा कर्म का कुछ रहा ही नहीं। तो ऐसी बात नहीं है कि ये सब कुछ परमात्मा ही कराता है या सब कुछ ये परमात्मा ही है। तो सब कुछ तो आज इतनी दुनिया किया नाश के लिए, आज इतने खून खराबियां, आज इतनी सब बातें, तो ये सब परमात्मा ही कराता है, तो फिर कराता वो है, फिर भोगते हम काहे के लिए, फिर भोगे भी वो, करे वो, कराए वो और पाए हम काहे के लिए, हा? ये तो जुल्म की बात हो जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम करते हैं हम पाते हैं, वो हमसे ये नहीं कराता है। तो ये समझना है कि वो हमसे क्या कराता है, इसी के लिए उसने कहा कि मैं आता हूँ, आकर कर करके मैं शिक्षा देता हूँ, वो शिक्षा दे करके जो मैंने बैठ करके कराया है नहीं कर्म, वो मैंने कर्म कराया, बाकी ये जो तुम कर रहे हो ये मेरी शिक्षा के या मेरे डायरेक्शंस पर या मेरी मत पर या मैंने कराता हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलो। तभी तो गीता में भी कहा ना जीवात्मा अपना शत्रु अपना मित्र है, ऐसे नहीं कहा कि जीवात्मा का शत्रु मित्र मैं हूँ, ऐसे तो नहीं कहा ना, अपना मित्र अपना शत्रु है, क्योंकि तू रिस्पॉन्सिबिल हो जो तू करती हो, ये तू कर रही हो, ये मैं नहीं कराता हूँ तेरे से, ये तू कर रही है, आत्मा आत्मा से बात करता है ना, देखो ये आत्मा से हम बात कर रहे हैं, ये आत्मा ऑर्गन से सुन रही है, कानों से सुनती कौन है, आत्मा। अभी आत्मा निकल जाती है शरीर से, फिर देखो शरीर पर आए ना, बॉडी पर ही है, तो वो आत्मा नहीं है तो फिर सुनते ही नहीं है, अभी आत्मा है तो देखो सुनती है, तो ये सुनती कौन है, तो ये आत्मा। तू अपना शत्रु और अपना मित्र है, जो तू करेंगे तू रेस पे, ये मैं नहीं कराता हूँ, अभी तू कोई बुरा करता हो या अच्छा भी करता हो तेरा कर्म का फल बनेगा ना, इसीलिए बाप कहते मैं तुमको आता हूँ शिक्षा देने के लिए, बैठ के समझा तू कर्म अच्छे कैसे कर और अच्छा कर्म कौन सा है, वो बैठ कर करके समझाता हूँ, उसी को यथारथ जानने को ही ज्ञान कहा जाता है, इसीलिए कहते हैं मुझे आना पड़ता है उस यथारथ बातों को समझाने के लिए। ओशन ऑफ नॉलेज ये सभी पतित पावन कहते नहीं, महिमा करते हो कि पतित पावन करने वाला, माना पतितों को पावन बनाने वाला, तो पतित बने हो ना, मैंने थोड़ी बनाया, अगर मैंने बनाया तो फिर मैं पावन करने वाला कैसा हुआ, फिर तो कहो पतित करने वाला, हा? पर तो ऐसे कहो ना, नहीं कहते हो पतितों से पावन करने वाला, तो मैं पावन बनाने वाला हूँ, न कि मैं पतित बनाने वाला हूँ, नहीं। तो ये सभी चीजें समझने की है, इसीलिए कैसे बनाने वाला हूँ वो आकर करके शिक्षा देता हूँ, उसी शिक्षा पर जो फिर धारण करके चलते हैं वो पावन बनते हैं, तो मेरी शिक्षा मैं आकर करके पावन बनाने की जो यथारथ नॉलेज है ना वो मैं देता हूँ, पावन बनाने की पवित्र बनाने की यथारथ नॉलेज और कोई मनुष्य नहीं दे सकता है, इसीलिए मुझे गाते हो कि तू ही पतितों को पावन करने वाला, क्योंकि पावनपन का नॉलेज तेरे पास है, हम कैसे पावन बने उसका नॉलेज तेरे पास है, इसीलिए कहते हैं तू आ ओशन ऑफ नॉलेज, हाँ आ अभी अथवा ज्ञान का सागर आ, और आकर कर करके ये नॉलेज दे। तब मैंने भी कहा है कि यदा यदा धर्म से जब जब अधर्म का टाइम आता है, मैं कहा है, प्रॉमिस है मेरा और मैंने रिस्पॉन्ड किया है कि यदा यदा जब जब अधर्म होता है मैं तब तब आता हूँ। तो अभी ये टाइम है वही, इसीलिए बाप कहते हैं मैं भी आकर करके विद्यालय अर्थात स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो कुछ कहो खोलता हूँ और उसमें बैठ कर करके मैं समझाता हूँ। तो एक अर्जन की तो बात नहीं है ना, हाँ इसमें है जो ओटे सो अर्जन, नर नारी बहुत है जिन्हों को मैं सुनाता हूँ और वो सुन कर करके इस नॉलेज को धारण कर करके और फिर यथारथ नॉलेज से अपनी यथारथ प्रारब्ध पाती है, उसको कहा जाएगा ज्ञान। बाकी ज्ञान को ये नहीं वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़ना या पढ़ाना उसको ज्ञान करना या पठन पाठन कहीं समझते हैं पूजन आदि करना ये भक्ति है, नहीं या तो करते हैं ऐसे तो हम है ही भगत। अभी भी देखो बाप कहते तू तो है ना, तू तो हाँ मेरे द्वारा लेने वाले हो ना, परंतु लेना कैसा है, क्या लेना है, किस जिससे लेना है उनका भी परिचय होना चाहिए। तो इन सभी बातों को यथारथ समझना इन्हीं का नाम ज्ञान है। तो ये ज्ञान यथारथ भक्ति का भी ज्ञान मैं आकर करके देता हूँ कि तू मुझे कैसे याद कर। इसीलिए कहा मैं अपनी याद खुद आकर करके सिखाता हूँ। इसीलिए योग सिखाना योगेश्वर परमात्मा है, इसीलिए उसको कहते हैं योगेश्वर, यानी योग सिखाने वाला भी स्वयं ईश्वरी है, जिससे लगाना है वही सिखाता है। ऐसे नहीं है लगाना उसे सिखाएंगे दूसरे, नहीं मनुष्य नहीं सिखा, मनुष्य मनुष्य को परमात्मा के साथ कैसा योग लगाया जाए वो नहीं, इसीलिए परमात्मा का ऐसी योग और ज्ञान के लिए मुझे आना पड़ता है। तब तो गीता के भगवान ने बैठ कर करके ये योग और ज्ञान की नॉलेज अर्जुन के सामने रखी। वो तो एक स्टोरी रूप में शास्त्र बनाए ना, तो एक अर्जुन एक भगवान का नाम रख कर करके बना दिया, नहीं तो है तो उसने ऐसे बैठ कर करके समझाया है। तो ये सभी तो हमको अभी पढ़ाने वाला कौन है, हा? हम भी सब स्टूडेंट्स हैं ना, अभी ये नॉलेज कौन दे रहा है, वो दे रहा है जिसको नॉलेज फुल सुप्रीम सोल, अभी वो बैठ कर करके समझा रहे हैं कि ये नॉलेज यथार्थ मैं क्या हूँ, कौन सी चीज हूँ और तू क्या है और मुझे कैसे याद करो, और याद करो तो उससे तुमको क्या बल मिलेगा, तुम्हारे पाप जो है नी बहुत जन्मों के किए हुए उसको जलाने की शक्ति मिलेगी। इसको कहा है योगाग्नि, गीता में भी है, इस योग से ये योग अग्नि का काम करेगा जिससे तुम्हारे पाप दगद होंगे नाश होंगे। तो इसको कहा है ये योग अग्नि, तो इसीलिए कहा है मुझे याद करो और फिर तुम्हारे जो कर्म है उनको भी श्रेष्ठ लगाओ अथवा श्रेष्ठ करो, तो फिर उससे तुम्हारा प्रारब्ध आगे के लिए अच्छी बनती चलेगी, जिससे आगे के लिए भी अच्छी बनेगी और जो किया हुआ है उल्टा खाता उसको भी इसी योग से वो अग्नि का काम करेंगी यानी भस्म रहेंगे, इससे तुम स्वच्छ बनते जाएंगे और फिर तुम जनरेशन से स्वच्छ को प्राप्त करते रहेंगे। तो ये है नॉलेज यथारथ और प्रैक्टिकल परमात्मा अपने साथ रिलेशन अथवा संबंध आकर करके जुटवाता है और वो प्रैक्टिकल लाइफ में अपने साथ संबंध जुटवा कर करके और कहते हैं मेरे बच्चे हो ना, कहते हो नहीं पिता हो तुम, तो पिता हो और तुम पुत्र हो तो फिर मेरे साथ पुत्र और पिता का पूरा रिलेशन रख कर करके और मेरे से जो तुमको हक मिलना है उसका पूरा अपना फॉलो करो, अर्थात जो मैं कहता हूँ उसी प्रमाण चल कर करके अपने को पवित्र बना कर करके मेरे से वो अपना ले ले, बर्थ राइट को हो या वर्षा को जो कुछ। तो बाप बैठ कर करके डायरेक्ट समझाते हैं ना, तो ये सभी चीजें समझने की, बाकी जो मनुष्यों के द्वारा हम सुनते आए ना वो तो सब बातें बाप कहते हैं। तभी तो अर्जुन को भी कहा ना ये मामा काका चाचा बाबा, उसने ऐसा नहीं कहा जिसमें तुम्हारा प्रेम है उसमें मन लगा, कहा मेरे में लगा, माम एकम मुझ जाए एक में, उसको तो कहा और सब भूला, कहा नहीं मामा काका चाचा बाबा अथवा गुरु जिन्होंने तुमको पढ़ाया सिखाया सबका भी नाम लेकर के कहा उन सबको भूलो, क्योंकि अभी मैं गुरुओं का गुरु मिला हूँ ना तुमको, हाँ इसीलिए कहा कि उनके भी गति सदगति करने वाला मैं हूँ, इसीलिए मैं सबका गुरु हूँ, गुरुओं का भी उद्धार करने वाला, साधुओं का भी उद्धार करने वाला, सबके गति सदगति करने वाला एक ही मैं सत्य गुरु हूँ, सत्य गुरु एक ही है, इसीलिए उसको कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। क्यों ट्रुथ है, क्योंकि वो ही सच्ची बात बतलाता है, बाकी सब जो कुछ सुनाने वाले हैं ना जरूर है कि वो अनट्रुथ, हाँ उसके ट्रुथ के कंट्रास्ट में क्या हो गया, झूठ कहेंगे ना, सच और झूठ। तो इसीलिए बाप कहते हैं ना कि सच बात यथारथ क्या है वो मैं जानता ही मैं हूँ, इसीलिए यथारथ नॉलेज मैं ही आकर के सुनाता हूँ, इसीलिए तो तुम गाते हो कि गॉड इज ट्रुथ। क्यों कहते हो ट्रुथ का मतलब क्या? ऐसे तो कहे कि भाई कोई कहे गया नहीं वो अमर अजर है, कहीं ट्रुथ का अर्थ निकालते हैं वो अमर अजर है यानी काटे काटा नहीं जा सकता, ऐसे तो आत्मा भी अमर अजर है उसको भी काटे काटा नहीं जा सकता, जलाए जले नहीं जा सकती है, उसी तरह तो आत्मा हम भी ट्रुथ है, वो तो बात ही नहीं, पर तू उसको खास क्यों कहते हो? गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ उसी नॉलेज के भेंट में है, ट्रुथ बात नॉलेज से लगती है कि तुम सत्यता को तुम जानते हो, इसीलिए सत्यता तुम बता सकते हो, जो जानेगा वही बताएगा, हम इन्हीं बातों की जानकारी सत्यता की जानते नहीं है कि व्हाट एम आई और तुम कौन हो, हम कौन है और हमारा ये सारे जन्मों का चक्कर कैसे चलता है, इन सभी बातों का जो नॉलेज है यथार्थ वो हम नहीं जानते, तुम जानते हो, इसीलिए कहते हो गॉड इज ट्रुथ। बाकी ट्रुथ का अर्थ इसी से नहीं लगता है कि वो अमर अजर है, वैसे तो आत्मा भी अमर अजर है, वो भी तो काटे काटी नहीं जा सकती, जलाए जली नहीं, एक शरीर लेती है दूसरा शरीर छोड़ती है फिर लेती है छोड़ती है, आत्मा थोड़ी जलती है, शरीर जलाते हो तो आत्मा थोड़ी जलती है, आत्मा तो अपने कर्म के हिसाब से जाकर करके दूसरा लेती है, तो वैसे तो वो भी अमर अजर है यानी उनको भी कोई काटे काटा नहीं, तो उसकी भेंट तो उसमें तो कहो फिर आत्मा भी कहो आत्मा इज ट्रुथ, तो खाली गॉड इज ट्रुथ क्यों, फिर तो आत्मा इज भी ट्रुथ था, फिर उसको भी कहना चाहिए, पर तो खास गॉड के लिए कहते हैं तो उसका संबंध नॉलेज के साथ है कि यथार्थ जानकारी जो है ना वो जानकारी वो जानता है, कौन सी जानकारी, इसको कहते हैं जानी जाननहार, परमात्मा के लिए कहते हैं कि जानी जाननहार नॉलेजफुल, तो इसी सभी बातों के लिए कि कौन सी जानी जा क्या जानता है, जानी जाननहार का भी बहुत अर्थ नहीं समझते हैं, कहीं ऐसे समझते हैं वो जानते हैं इसके अंदर में क्या है अभी, हाँ वो परमात्मा सबका अंदर जानता है भाई इसके अंदर में क्या अभी विचार चल रहे हैं, इसके अंदर आज चोर को ख्याल चोरी करने का, उसको खून को खूनी, कोई को अच्छा कोई को बुरा, वो रीड करता, वो तो थॉट रीडर्स का काम है, वो जानी जाननहार का मतलब ये नहीं है खाली थॉट का रीड करना, वो बातें नहीं है, उसके रीड करने से मतलब ही क्या, अच्छा अभी कोई को बुरे ख्याल किसके अंदर चल रहा है, उसको कोई रीड भी करे तो चलो परमात्मा उसको जाना फिर क्या हुआ, उसमें ऐसा थोड़ी फिर भी जा करके वो चोर तो चोरी कर लेता है, उसको जाना तो क्या हुआ, पर तू नहीं हमारे सारी कर्म गति को वो जानता है, यानी जानन का हार का मतलब ही है कि वो हमारी जो कुछ कर्म की या गति है उसी सभी बातों को जानता है कि ये कर्मों से कैसे गिरा है कैसे फिर ये चढ़ सकता है, इन्हीं सभी बातों को वो जानता है, इसीलिए जानने वाला फिर आता है और आकर करके हमको चढ़ाता है, हमारी कर्म गति कहाँ से गिरी है क्यों गिरे है क्या कारण हुआ कैसे गिरे उन्हीं सभी बातों को वो जान करता है, आकर के समझाते गिर तुम्हारा संग जाकर के माया से हुआ ना पांच विकारों से इसीलिए तुम गिरे हो, हाँ अभी इसे संभलो और इसी विकारों का संग छोड़ो तो फिर तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे और तुम फिर चढ़ जाएंगे, और उसी चढ़ने का फिर अभी बल भी मैं देता हूँ क्योंकि मेरा पावर चाहिए नहीं तुमको, इसीलिए कहते मुझे याद करो तो मेरे से तुमको शक्ति मिलेंगी बल मिलेगा, इसीलिए ही मुझे मेरे साथ योग अथवा ये जो मैंने कहा है कि मुझे निरंतर याद रखो इसीलिए कि तुमको ताकत मिलेगी शक्ति मिलेगी, तो ये सभी चीजें समझने की, बाकी ऐसे नहीं वो थॉट खाली रीड करता है थॉट रीडर, तो वो तो थॉट रीडर तो बहुत है जो थॉट रीड कर जानते हैं, वो भी एक विद्या है सीखते हैं और थॉट रीड करते हैं वो भी होते ही, परंतु नहीं जानी जाननहार उनको उन्हीं हिसाब से कहा जाता है कि वो हमारे सारे कर्म गति को जानता है और हमारे कर्मों को चेंज कराता है अर्थात श्रेष्ठ बनवाता है और बुरे कर्मों का नाश कराता है, इसीलिए उनको कहा जाता है जानी जाननहार, तो ये सभी चीजों को भी समझना है ना, तो उनकी महिमा उनका कर्तव्य है और वो कैसे कर्तव्य करता है, तो इसी सभी बातों को यथार्थ समझना इन्हीं का नाम ज्ञान है, तो ये भी हमें बातें नॉलेज होनी चाहिए ना, तो हम जिसको याद करते हैं तो उस याद करने का भी हमको ज्ञान होना चाहिए, बाकी ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है कोई अलहदी कोई चीज है ना, बाकी जो कुछ हम करते आए ना वो अयथार्थ, इसीलिए कहते हैं उस अयथार्थ से तुमको जो पूर्ण फल मिलना चाहिए ना वो नहीं मिलता अल्पकाल का, हाँ चलो तुमने उल्टा सीधा फिर भी भगवान को याद किया है ना तो चलो थोड़ा बहुत उसका तुमको मिल जाता है, परंतु मेरी यथार्थ जो प्राप्ति है ना वो नहीं, वो तो जब ही मुझे यथार्थ जानेंगे तब मेरे द्वारा होंगी, बाकी ये तो तुम थोड़ा बहुत तुमको किसी ने कह दिया तू इसको ही भगवान समझ कर करके याद कर ये तेरा भगवान है समझो, हाँ चलो तुम उसमें लगा फिर भी भगवान को क्या उल्टा की सीधा जान करके तुमने भगवान को ही याद रखा तो चलो तुमको वो थोड़े टाइम का कुछ ना कुछ मिल जाएगा, हाँ यहीं तू थोड़ा बहुत कुछ सुख को पा लेंगे बस ना, परंतु नहीं मेरे द्वारा जो तुमको हाँ सदा का सुख जिसमें कोई हाँ दुख की बात न हो एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी ये है सदा का सुख, वो जो लाइफ है ना, उस लाइफ का तो फिर मेरे को जानने से, यथार्थ जानने से और मेरे द्वारा यथार्थ प्राप्ति तब होगी जब मुझे यथार्थ रीति से जान करके यथार्थ याद रखेंगी। तो अयथार्थ और यथार्थ का भी अर्थ समझना है नी, कि पूरी तरह से और वो न पूरी तरह से, यानी जैसे आया वैसे। तो जैसे आया वैसे वो तो चलाते आए है ना, उसे तो जो पाते आए वो तो देख रहे हो, यहाँ कोई मर्तबे पाते हो, कोई धनवान हो, किसी को थोड़ा बहुत सुख है, कोई बेचारे कैसे हैं, तो ये सब क्या है, ये थोड़े कर्मों का फल मिला है, वो फल खा रहे हो ना, पर तो उस फल में पेट नहीं भरता है, हा? वो खाते ही मन शांत और दुख में है ना। धनवानों से पूछो फिर भी दुखी है बेचारे, हाँ सब मर्तबे वालों से पूछो, हाँ जितना बड़ा होना आज की दुनिया में उतना ही दुख हो, दुखी होना, कहते बड़ा होना बड़ा दुख पाना, हाँ क्योंकि आज की संसार है ही दुख है शांति की, तो दुख है शांति की दुनिया में बड़ा होना बड़ा दुख पाना, दुख है शांति की दुनिया में धनवान होना और ही मुसीबतें उठाने की हैं। इसीलिए बाप कहते ये तो यहाँ का सुख तो कोई अलग काल के लिए, सुख में सार नहीं है, इसीलिए मैं तुमको वो संसार बना के देता हूँ जिसको हेवन कहा जाता है। इसीलिए मुझे कहते हैं हेवनली गॉड फादर, यानी हमारा जीवन हेवनली बनाता है। हेवनली का मतलब है सदा काल के सुख का, बाकी हेवन कोई और दुनिया नहीं है ना, कोई और चीज है, यही दुनिया है। हेवन भी इधर थी, हेल भी इधर ही थी, लेकिन ऐसे नहीं कहेंगे अभी दोनों है, नहीं अभी हेल है, जब हेवन है तो हेल नहीं है, जब हेल है तो हेवन नहीं है, ये कंट्रास्ट समझना। जैसे रात है तो अभी दिन नहीं है, फिर दिन होगा तो रात, ऐसे नहीं रात दिन इकट्ठी होती है या सर्दी गर्मी इकट्ठी होती है, कहीं ऐसे समझते हेवन भी इधर ही है क्योंकि जो शाहूकार है बड़े मजे में बैठे हैं ये हेवन में है, पर तू पूछो उसको हेवन में है, नहीं वो भी दुख है शांति में। इसीलिए ये संसारी दुख है शांति का, हेवन जिधर कोई भी दुख ना हो, जब सुख है तो कोई दुख नहीं, जब दुख है तो कोई सुख नहीं, तो अभी की दुनिया में सुख है ही नहीं। वो जो सुख जिसको कहा जाता है इसको कहेंगे अलग काल का, वो सदा काल के जो सुख की प्राप्ति है ना उसको हेवन कहेंगे। फॉर जनरेशन में वो शरीर छोड़ना, शरीर लेना, शरीर में रहना सदा का सुख। अभी तो देखो मरते तो भी बेचारे दुखी होकर के आ दुख जाते हैं तो भी दूसरे भी रोते ही हैं, कह तो भले है कि स्वर्गवास हुआ, हेवनली एयरपोर्ट में गया, अरे भाई हेवनली एयरपोर्ट में गया तो फिर काहे के लिए रोते हो, और खुशी करनी चाहिए, अच्छा हुआ हेवन में गया ना, नर्क से हेवन में गया तो फिर रोने की क्या बात है, एक तरफ तो रोते हैं और दूसरे तरफ कहते हैं हेवनली एयरपोर्ट में गया, देखो आश्चर्य की बात है। इसीलिए बाप कहते हैं कि सच से तो गया ही नहीं ना, रोते तो सच है ना, क्योंकि गया नहीं है तो, परंतु हेवन ही अभी मैं बनाता हूँ, हेवन है ही कहाँ जो हेवनली एयरपोर्ट में गया, वो कोई दूसरी दुनिया थोड़ी है, पहले मैं हेवन बनाऊं तो सही ना, जब हेवन इस वर्ल्ड को बनाऊं तभी हेवनली एयरपोर्ट में जाए, तो पहले एयरपोर्ट बनाऊ ना हेवन का, हाँ वो बनाऊ ना दुनिया बनाऊ ना, तो वो तो अभी आया हूँ बनाने के लिए, जब बनाऊंगा फिर तुम्हारी जनरेशन सदा काल का तुम्हारे जो पुनर्जन्म है ना वो हेवन में रहेगा, अभी है ही हेल तो तुम्हारा पुनर्जन्म कहाँ होगा, हेल में ही होगा, तो शरीर छोड़ेंगे कहाँ जाएंगे, फिर हेल में ही आएंगे और कहाँ जाएंगे। इसीलिए बाप कहते ऐसे नहीं कोई गए हैं बहुत गए हैं पहुंचे हुए हैं, और कह नहीं वर्ल्ड तो यही है ना, वर्ल्ड इज वन, गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन, बाकी ऐसे नहीं है कि यहाँ कोई बहुत दुनियाएं हैं यहाँ का कोई, नहीं दुनिया एक है मनुष्य की कॉर्पोरियल, बाकी है सोल्स की इनकॉर्पोरियल जहाँ से हम आत्माएं उतरती हैं, तो साइलेंस वर्ल्ड जहाँ आत्माओं का स्टॉक, फिर वहां से हम आते हैं नंबर वाइज, ये संख्या कहाँ से बढ़ती है, इतनी सोल्स कहाँ से आती हैं, कोई तो सोल्स का स्टॉक है क्योंकि सोल्स तो इमॉर्टल है ना, तो इमॉर्टल सोल्स तो कहाँ से तो आती है ना, तो ये सभी ये इतनी संख्या जो यहाँ बढ़ती जा रही है ये कहाँ से बढ़ती है, इतनी सोल्स कहाँ से आती है, तो ये भी सभी समझना। तो बस सोल्स वर्ल्ड जिसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं, दूसरी ये कॉर्पोरियल। इसीलिए बाप कहते हैं अभी बहुत हो गया है यहाँ स्टॉक नीचे, इसीलिए ये लड़ना झगड़ना दुख है, अब ये सब फिर यहाँ संख्या कम करनी है, फिर उधर स्टॉक भेजना है, इसीलिए अब कहते हैं यहाँ का स्टॉक को अभी कम करना है ना, इसलिए डिस्ट्रक्शन की तैयारियां है और कंस्ट्रक्शन, हाँ कंस्ट्रक्शन भी साथ चाहिए क्योंकि ये अनादि है, ऐसे तो नहीं प्रलय हो जाएंगे ना, तो डिस्ट्रक्शन के साथ कंस्ट्रक्शन भी चाहिए, तो पहले कंस्ट्रक्शन हाँ फिर डिस्ट्रक्शन, ऐसे नहीं डिस्ट्रक्शन करके पीछे कंस्ट्रक्शन करूंगा, नहीं दोनों जिसको संगम कॉन्फ्लुएंस पीरियड कही जाती है, तो इसीलिए कहते हैं अभी कर रहा हूँ, कैसे ये प्यूरिटी का भी कंस्ट्रक्शन का फाउंडेशन लगा रहा हूँ और इधर ये डिस्ट्रक्शन की तैयारियां, तो ये कंस्ट्रक्शन मजबूत हो जाएगा तो डिस्ट्रक्शन काम अपना करे, अभी वो भी तैयारियां इधर भी तैयारियां है, हा? ये भी तैयार हो रहे हैं, प्यूरिटी का फाउंडेशन पर रहा, ये भी मजबूत हो जाए अच्छी तरह से, इधर भी तैयारी है, वो भी तैयार हो रहे हैं। जब ये कंप्लीट तैयार हो जाएंगे तो डिस्ट्रक्शन हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ये दोनों का कनेक्शन है। वो गीता में भी है कि इसी ज्ञान यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। तो जितना जितना ये अपना बनते जाएंगे प्योरिटी में, तो उतना उतना वो विनाश ज्वाला प्रज्वलित होकर के अपना काम करें। तो ये सभी चीजें हैं जिसको अच्छी तरह से समझना है। ये अभी वही टाइम है जिसको कहा जाता है माँ भारी माँ भारत समय। इसी टाइम पर ही परमात्मा का है कि यदा यदा है, वो अभी यदा यदा वाला टाइम आया है। तो मैं अपना काम कर रहा है, अब उससे क्या अपना लेना है, वो जो लेगा हम भी उनके पीछे लगे हैं। अभी ऑफर भी करते हैं कि आओ अभी बाप से लियो, रिलेशन जोड़ो, अपना आपका भी पिता है ना, खाली हमारा थोड़े ही है, सारी दुनिया का पिता है ना। वो कहते हैं नहीं गॉड इज वन, तो गॉड ही तो पिता है ना। अभी वो पिता आया है, कहते हैं अभी मेरे से अपना जन्म सिद्ध अधिकार लियो, अब जो लेंगे वो लेंगे, न लेंगे तो फिर डिस्ट्रक्शन। तैयार है या उधर होना है या उधर होना है, अभी क्या करना है वो समझो। हाँ, तो ये तो हर एक को अपना समझ कर करके बाप से अपना जन्म सिद्ध अधिकार पाना है। अच्छा अभी टाइम हुआ है, मनुष्य जीवन में क्या चाहते हैं कि हर एक मनुष्य जीवन में सुख और शांति चाहते ही हैं, और उसी सुख और शांति के लिए ही संसार के इतने पुरुषार्थ है जितने भी है, चाहे संसारिक पदार्थों के चाहे ईश्वरीय मार्ग के, जितने भी सब कोशिश है अनेकानेक। कोई समझते हैं संसारिक पदार्थों से कुछ सुख मिलेगा इसीलिए उसी की कोशिश करते रहते हैं, कोई समझते हैं कि नहीं ईश्वरीय कुछ मार्ग अपनाने से कुछ उन्हीं से प्राप्ति होंगी, तो अनेक अनेक कोशिश करते ही रहते हैं। लेकिन ये सब होते हुए भी आज नहीं हुई है, होती आई है बहुत काल से, लेकिन हमारे जीवन की जो सुख शांति की प्राप्ति कहें वो हमारे को मिल नहीं पा सकी है जो हम चाहते हैं। तो ये समझना है कि वो चीज मिलने की कोई और तरीके से है, और उस देने वाला भी कोई ज़रूरा और ही होगा। अभी और कौन, मनुष्य तो जो कुछ पुरुषार्थ और कोशिश कर रहे हैं उनका तो हम संसार देख रहे हैं कैसा संसार हुआ है, लेकिन उसी संसार में कोई कहा जाता है अशांत और दुख का, अशांत दुख है तभी तो चाहते हैं नहीं सुख शांति। अगर सुख शांति होती तो फिर संसार, हाँ ऐसे क्यों कहते हैं वर्ल्ड पीस चाहिए, हाँ विश्व शांति चाहिए, फिर तो विश्व शांति और वर्ल्ड पीस ये सभी शब्द आते ही नहीं। उसकी माना है कि वर्ल्ड में पीस नहीं है, विश्व अशांत है, फिर तो विश्व शांति और वर्ल्ड पीस ये सभी शब्द आते ही नहीं। उसकी माना है कि वर्ल्ड में पीस नहीं है, विश्व अशांत है, सारे विश्व की बात है, तो उसकी माना विश्व अशांत है, तब तो कहते ना विश्व शांति चाहिए, तो उसकी माना विश्व अशांत है। तो अभी विश्व की शांति और विश्व की सुख देने वाला तो विश्व का मालिक ही रहेगा, नहीं विश्व को सुख और विश्व को शांति देना कोई मनुष्य का काम नहीं है, उसका काम है जो विश्व का मालिक है, मालिक तो एक ही है ना? जो क्रिएटर है। अभी वो क्रिएटर फिर कैसे देता है, कभी देता है, इन्हीं बातों को भी सबको समझना है, जो फिर स्वयं ही मालिक जो क्रिएटर है ना वो आकर के समझाता है। ये समझाए भी कौन कि तुमको कैसे मिलेगा, वो कहता है इसीलिए मुझे ऐसी समझाने के लिए मुझे आना पड़ता है, और मेरे आने का समय है ये संगम, संगम समझते हो ना, कॉन्फ्लुएंस युग जिसको कहा जाता है, कॉन्फ्लुएंस का मतलब ही है जबकि हमारा ये चक्कर उसका अंत और फिर नए चक्कर का आग, गोल्डन एज का आग, कलह युग की अंत, आयरन एज की एंड और गोल्डन एज की आग, तो इसको कहा जाएगा संगम। तो उसी संगम, अभी ये संगम के बाद का भी बहुतों को मालूम नहीं है, चार युग बहुत बतलाएंगे,
पूछेंगे कितने युग है, तो शायद जो है कुछ इन्हीं बातों में है वो बता देंगे भाई चार युग है। कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये बता, अंग्रेजी में भी कहते हैं गोल्डन, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन एज। लेकिन ये कॉन्फ्लुएंस युग अथवा कॉन्फ्लुएंस टाइम जिसी के लिए परमात्मा ने कहा है कि मैं युगे युगे आता हूँ, गीता में है ना, तो कईयों ने उसका अर्थ ऐसे समझ लिया है कि युगे युगे माना सतयुगे भी आता है, त्रेता युगे भी आता है, कलयुगे, द्वापर युगे, हर एक युग में आता है। तो इसीलिए समझते हैं युगे युगे का मतलब है युग में, हर एक युग में तो काम ही नहीं है ना, सतयुग में क्या करेगा, सतयुग में तो है ही सतयुग, उसमें क्या कर करके बनाएगा, हा? वो आता ही है धर्म विनाश और धर्म स्थापना के लिए। तो सतयुग तो है ही धर्मात्माओं का युग, तभी तो उनको सतयुग गोल्डन एज कहते हैं ना। और सिल्वर एज में भी दरकार नहीं है, उसमें भी हाँ चंद्रवंशी राजाओं का राज है जिसके लिए तो हाँ गांधी जी कहते थे राम राज्य बने, हा? तो उसमें भी तो दरकार नहीं थी। द्वापर काल में भी दरकार नहीं है क्योंकि द्वापर के बाद तो कलयुग आने का है ना, इसीलिए आना है उनको कलयुग के एंड में और सतयुग के आद में। वो उसको कहा है संगम युग, यानी संगम युगे युगे, यानी संगम संगम का जब टाइम होता है, यानी चक्र के एंड और आद का जब संगम का टाइम है तब मैं संगम संगम पर आता हूँ। तो कहने का भाव ऐसा है, लेकिन गीता में युगे युगे खाली अक्षर डाला है, संगम युग न डालने के कारण, वो संगम नाम न होने के कारण वो युग युग का अर्थ बहुत ले गए हैं कि सतयुग और त्रेता सभी युगों में आती हैं। अभी सभी युगों में तो जरूरत ही नहीं है ना, देखो ये चार युग का इसीलिए ये दिखलाया हुआ है इसमें। अभी सतयुग में क्या करेंगे आकर, वो तो है ही उसी समय देवताओं का राज्य, तो आना है उसमें कलयुग एंड और सतयुगात का संगम, कॉन्फ्लुएंस टाइम जिसको कहा जाता है। तो ये अभी वो टाइम है, अभी का समय जो अभी प्रेजेंट समय, इनको कहा जाएगा संगम। तो पांच युग हो गए ना, एक सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग। तो चार युग तो सभी बतलाएंगे, पांचवा युग कोई नहीं बतलाएंगे, भाई पांच युग। तो ये जो पीरियड है अभी का, इसीलिए परमात्मा ने कहा है कि मैं आता, ठीक वही कहा है न रात न दिन, यानी हमारी गीता में भी है नी ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन, तो दो युग है ब्रह्मा की रात, दो युग है ब्रह्मा का दिन। दिन कौन से हैं? सतयुग और त्रेता ब्रह्मा का दिन, और द्वापर और कलयुग ब्रह्मा की रात। तो कहते हैं न मैं ब्रह्मा की रात में आता हूँ न ब्रह्मा की दिन, मैं संगम में, यानी रात की एंड और दिन का आरंभ का टाइम, तो उसका हुआ संगम, इसीलिए मैं संगम पर आता हूँ। तो ये सभी चीजें को समझना है, इसीलिए ये अभी वो टाइम है। और इसको ही कहा जाता है ऑस्पिशियस युग, जैसे तीन बरस के बाद में एक मंथ आता है नी, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं उसके लीप युग, परंतु उसको हिंदी में भी कहते हैं पुरुषोत्तम, हाँ उसको पुरुषोत्तम नाम से हिंदी में कहते हैं, और उसको लीप मंथ कुछ ऐसा देते हैं अंग्रेजी में कुछ कहते हैं। तो तीन मास, इसी तरह से ये चार युगों में ये छोटा सा टाइम का जो है जिसमें परमात्मा, इसको कहेंगे ऑस्पिशियस युग, इसमें परमात्मा आती हैं। अभी ये संगम का टाइम, अभी ये है संगम, अभी जिसका जो अभी टाइम चल रहा है इसको संगम कहेंगे, क्योंकि नई दुनिया का अथवा हमारी गोल्डन एज के आरंभ का अभी ये फाउंडेशन अथवा कलम कहो सैपलिंग कहो वो लग रहा है, और उधर ये डिस्ट्रक्शन की तैयारियां हो रही हैं, इसको कहेंगे कॉन्फ्लुएंस टाइम। तो ये बात परमात्मा भर करके समझाते हैं कि इसी अपने आने का टाइम भी मैं समझाता हूँ, मेरे आने का टाइम कौन सा है वो भी मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं आकर के समझाता हूँ। देखो नई बात है नहीं, तुम समझ बैठे हो कि सतयुग में आएगा, त्रेता में आया, द्वापर में आया, ये आता ही आता है युग युग में, पर तो नहीं मैं कोई भी युग में नहीं आता हूँ, आता ही संगम पर, क्योंकि मेरा काम ही अभी होगा ना, मेरा काम सतयुग में है ही नहीं, क्यों आऊंगा, वहां तो बैठे हैं वो तो है ही सुख शांति, उधर क्या है, मैं आता ही हूँ अधर्म टाइम पर, अधर्म की जब एंड हो, तो एंड होने तभी आकर के अधर्म नाश करूं, तो इसीलिए मैं आता ही उसी टाइम पर। तो ये सभी चीजें समझने की हैं, और अपना भारतवासियों को भी जो वर्ण है ना वो भी समझने की है, कि यहाँ जो कहते हैं चार वर्ण कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अभी अपने भारतवासियों के भी जो वर्ण है ना, ये चार जो वर्ण कहे हैं
वास्तव कर करके उसको भी कहेंगे पांच वर्ण। कौन से? सतयुग में देवता, पीछे त्रेता में खित्री, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण। अभी ब्राह्मण ये संगम में जो है ना, तो संगम पर आकर के परमात्मा ये ब्रह्मातन से ये मुख वंशावली जो बरकर के नॉलेज सुनाती हैं, तो वो जो प्यूरिटी को धारण करते हैं उन्हों को कहेंगे ब्राह्मण। वो तो एक ब्राह्मण जाति है जो अपने को ब्राह्मण नाम से कहलाते रहते हैं, तो वो तो अपना लगा रखा है एक जात पर, परंतु नहीं, ब्राह्मण जिसका महत्व है वो ब्राह्मण है जो परमात्मा ने आकर करके नई दुनिया जब रची है, ब्रह्मादि क्रिएटर भी कहा हुआ है ना, तो उनके द्वारा जो वो मुख वंशावली रची है, यानी मुख से नॉलेज सुना कर करके जो प्यूरिटी की जनरेशन की सैपलिंग लगाई है, तो जिन्हों से सैपलिंग लगाई है उन्हीं सैपलिंग लगाने वालों को ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये अभी की बात है, अभी वो जो सैपलिंग प्यूरिटी की जो लगाते हैं वो ब्राह्मण हो गए। तो अभी हम कौन है? हम ब्राह्मणिया और ब्राह्मण ऐसे कहेंगे, यानी जो प्यूरिटी को अपनाए रहे है नई जनरेशन के लिए। तो ये बैठकर करके बाप समझाती है कि ब्राह्मण, फिर जाकर करके सतयुग में देवता बनेंगे। ब्राह्मण सो देवता, इसीलिए कहते हैं ब्राह्मण देवता या नमः, कहते हैं इकट्ठे कहते हैं ब्राह्मण देवता या नमः। तो अभी ये ब्राह्मण फिर जाकर करके देवता बनते हैं, तो ब्राह्मण देवता है नमः, क्योंकि ये ब्राह्मण बनने से फिर हम देवता जाकर बनते हैं। कि ये सच सच जो ब्राह्मण है, सच्चे ब्राह्मण, हाँ वो तो नाम रख दिया है उन्होंने, परंतु सच्चे ब्राह्मण तो मैं आकर करके रचता हूँ ना। कैसे रचता हूँ? इसी तरीके से कि मैं जो बैठ कर करके मुख से नॉलेज सुनाता हूँ, उसी नॉलेज अथवा ज्ञान और योग से, ये है वो राजयोग, जिससे बैठ कर करके इसी योग और ज्ञान से मैं ये राजाई देवताओं वाली सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्थापन करता हूँ। इसी को कहा है राजयोग। तो इस योग से अथवा इस योग बल से हम ये राजाई प्राप्त करते हैं। तो ये है वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई प्राप्त करने का योग, जिसमें हम सदा सुखी थे, अर्थात पूर्ण सुख। उसी समय विश्व सुखी था, उसमें पूर्ण सुख था, हेल्थ वेल्थ एवरीथिंग सब एवर थी, कोई दुख नहीं था। इसीलिए कहते हैं जब विश्व शांति, विश्व का सुख पूरा था, तो उसी समय यही देवी देवताओं का राज्य था। तो अभी फिर से जब वो राज्य अथवा वो धर्म हो, तभी तो विश्व शांति हो ना, विश्व सुख हो ना। अभी अनेक धर्म अनेक राज्य हैं, उसके होते विश्व शांति और विश्व सुख कैसे होगा? नहीं हो सकता। इसीलिए कहते ये अनेक धर्म का नाश और एक आदि सनातनी देवी देवताओं का राज्य अथवा देवी देवताओं का धर्म की स्थापना कर। देवी देवताओं का मतलब ये है मनुष्य प्यूरिफाइड जो थे, उनका नाम देवी देवता धर्म था, राज्य था, जिसमें सदा मनुष्य प्योर थे और सदा प्योर ना होने के कारण सुखी भी थे। प्योरिटी है तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है, नो प्योरिटी नो पीस नो प्रॉस्पेरिटी। तो अभी ऐसी हाँ, जब प्योरिटी अपनाए तब तो ना, तो प्योरिटी का भी ये सैपलिंग लग रहा है। इसीलिए अभी ब्राह्मण, फिर वो जनरेशंस में फिर तो आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र मिलेगा ना, अभी तो पवित्र हो रहे हैं, इसीलिए अभी ब्राह्मण, पीछे देवता। तो ये सभी चीजों को समझना है, इसीलिए बाप बैठ करके अभी जो बेहद का बाप है, जो इसी सभी नॉलेज को जानता है, वो बैठ करके हमको अपने वर्णों का और अपने यहाँ ये युग आदि का भी नॉलेज समझाते हैं। अभी कौन सा टाइम है वो बतला कर करके अभी कहते हैं उसी टाइम का फायदा लियो। तो अभी कौन सा समय है, इसी समय अभी क्या करना चाहिए, उसके मुताबिक अपना पुरुषार्थ रख करके आने वाली नई दुनिया के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अभी आने वाली नई दुनिया क्या आने की है, कैसी है, तो उसमें भी हम उस जैसे लायक बनेंगे तब तो नई दुनिया की प्रारब्ध पा सकेंगे। नहीं, कर्म के आधार पर मनुष्य के जीवन का आधार है ना, तो हमारा जब जीवन का आधार कर्मों के ऊपर है, तो हमको अपने कर्म से श्रेष्ठ बन करके अभी ऐसे जीवन का अथवा जनरेशन का प्रारब्ध पाने का अपने को लायक बनाना है। तो उसके लिए अभी प्रिपेयर होना है, किसमें प्रिपेयर होना है, क्या करना है, वो ये सिखाया जा रहा है। उसका तो ये कॉलेज है, स्कूल है, तो ये सब समझना है। अच्छा, अभी टाइम हुआ है इसलिए दो मिनट साइलेंस। थोड़े देवताओं के नाम है, इसको कहा जाता है प्रायलोप, यानी जैसे कि लोपी है, परंतु थोड़ा भाई थोड़ा इसके चिन्ह है, बाकी प्राय लोप, प्राय का मतलब है थोड़ा कुछ है, बाकी तो लोपी है। तो बाप कहते थोड़ी निशानियां बाकी रहती हैं, बाकी इनकी प्रैक्टिकल बायोग्राफी यथार्थ सभी बातें वो तो सब गायब है, देवताओं की भी गायब है, तो बिल्कुल गायब हो जाती है, बहुत पलट जाती है, प्रैक्टिकल तो रहता ही नहीं है, परंतु जिनों को भी याद करते हैं उनकी भी जीवन का पूरा पता नहीं रहता है, इसी को कहा जाता है प्राय लोप। खाली नाम मात्र चित्र है, बस चित्र भी कोई ओरिजिनल तो नहीं है, हर नाम मात्र, तो कहते बाकी नाम मात्र जैसे जा करके रहते हैं, तभी मैं आता हूँ। तो यहाँ ही सब हुआ है नहीं काम, इधर इसीलिए भारत का नाम और इधर ही वर्ण आदि और ये सभी बातें इधर ही मानी जाती हैं। तो ये सभी चीजों को अच्छी तरह से समझना है, और समझ कर कर करके अब यहाँ हम उसी सौभाग्य को पा रहे हैं। तो अपने पास नशा होना चाहिए, क्या ऐसी उच्च प्राप्ति के अधिकारी हम बनते हैं, सौभाग्य है नहीं ऊंचा, तो अपने में उसका शुद्ध नशा कि हम ऐसे बेहद बाप के हक को हम ही पाने वाले हैं। हमको यह ब्राह्मणों को रच कर करके अभी पढ़ा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, और साथ साथ वो हक जो है वो हमें दे रहे हैं। तो ब्राह्मणों को अपना ब्राह्मणपन का भी बड़ा रहना चाहिए, और कितने ब्राह्मण पवित्र और शुद्ध है, तो अपनी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ है। देखो ब्राह्मणों को बड़ा अपना नशा रहते हैं, वो समझते कि नहीं हम बड़े, परंतु वो कहाँ से पकड़ा है, इधर से। तो पहली पहली संतान को नशा होना चाहिए, तो हम डायरेक्ट परमात्मा की पैदाश है एकदम, तो इतनी परमात्मा की पैदाश, तो इतनी पवित्रता, इतना अपना रॉयलिटी, इतनी सब बातों की मर्यादा, किसकी मर्यादा, पवित्रता की मर्यादा, जिसी सभी बातों को बहुत अच्छी तरह से अपनाना है। इसीलिए इसी कुल का बहुत नाम है ना, तो अपना कुल बहुत ऊंचा है, इसीलिए ऐसे ऊंचे कुल वाले बच्चों को अपने कुल का, अपने खानदानी का, अपने बाप का पूरा ध्यान रखने का है, और अपनी एक्टिविटी, अपनी धारणाओं के ऊपर भी अच्छी तरह से अटेंशन देकर करके अभी बाप से ऐसा जो कुछ पाने का है वो पाना है, तभी तो पूरा ले सकेंगे ना। तो ये है अंदर में अपने रखने की बातें हैं, कोई ऐसे भी नहीं है नशा है तो कोई बाहर से हम कुछ अपना नहीं, ये अंदर की बातें हैं, अंदर में खुशी रहेगी कि हम अभी देखो किसकी संतान और कौन बनते हैं। तो अभी हमारी चढ़ती कला है, उतरती कला अभी पूरी हुई, अभी हमारी चढ़ती कला है, उसी समय ही बाप आकर करके हमको देखो ये सभी नॉलेज देते हैं तीनों कालों की। इसीलिए त्रिकालदर्शी हम भी अभी मास्टर त्रिकालदर्शी हैं, बाप त्रिकालदर्शी हैं, तो हम भी तो कम नहीं है, हम भी उनके बच्चे अभी मास्टर त्रिकालदर्शी, यानी तीनों कालों को जानने वाले हम भी बनते हैं ना। बाप बैठकर करके हमको तीनों कालों की, तीन काल का, तीन काल क्यों का है, चार काल नहीं, पांच काल नहीं, काल का मतलब है समय, तो हमको तीन काल का बैठकर करके नॉलेज दिया, क्योंकि तीन समय का चेंजेस है, कैसे हैं कि हम आदि आत्माएं शुरू शुरू से निराकारी दुनिया से आती हैं, तो पहला समय वो है जहाँ से हम आत्माएं आती हैं भाई निराकारी दुनिया से, फिर आती हैं इधर कॉर्पोरियल, इसमें फिर हम बहुत में बहुत 84 जन्मों का चक्कर चलते हैं, तो 84 जन्म पूरे करते हैं, फिर हम वापस जाते हैं। तो मध्य काल हो गया हमारा ये जन्मों का, आदि काल हो गया निराकारी दुनिया से आने का, हम निराकार हैं, तो आदि हमारी शुरू आत्मा की आदि है, हमारी निराकारी की, हम आदि निराकारी हैं, पीछे मध्य में जन्मों में आते हैं, ये पुनर्जन्म का हमारा चक्कर है, फिर वो पूरा होकर के फिर हमको अंत जहाँ से आए हैं फिर वहां जाना है, तो आज मध्य अंत, तो ये सभी है कि फिर हमको पाठ पूरा कर करके जाना है, तो जाना भी है, आना भी है, फिर जाना भी है, और मध्य काल में हम पुनर्जन्म, तो ये हुआ आत्माओं का आद मध्य अंत, तो तीन काल आत्माओं का। अगर फिर जन्मों का लेंगे तो जन्मों की आद फिर सतयुग से, कि हमारे पहले पहले जो जन्म है वो शरीर भी पवित्र है, तो आदि फिर वहां से वो हो गई सृष्टि की आद, वो हो गई आत्माओं की आद, तो सृष्टि की आद लेंगे तो कहाँ से लेंगे, देवताओं से, तो पहले पहले हम देवता, पीछे किस तरह से ये सब वर्णों का चक्कर लगाते, अभी फिर मध्य काल फिर कहेंगे जब फिर हमारे में विकारों की आती है, चेंज आती हैं, तो वो फिर वो जन्मों का मध्य है, तो जन्म का आद कहेंगे देवता पहले पहले, पीछे फिर हमारे भाई माया आती है, पांच विकार आती हैं, तो फिर हमारा मध्य वहां से फिर अंत होता है, जब फिर विकारों के इस बंधन से छुटकारा पाकर करके फिर जाते हैं। तो ये हुआ जन्मों का आदि मध्य अंत, और वो हुआ आत्मा का आदि मध्य अंत। इसीलिए कहते हैं इन तीन काल, इन तीनों कालों का, जन्मों के भी तीन काल का और आत्मा के भी तीन काल का, कि आत्मा पहले नंगी है यानी शरीर नहीं है, फिर शरीरों के जन्मों में आती हैं, फिर हाँ उन्हीं शरीर को जन्म के बंधन से भी छुटकारा पाकर के फिर जाती हैं। ये तीन काल आत्मा का और वो जन्मों का तीन काल। तो कहते हैं तीनों कालों का, सृष्टि के भी और आत्मा के भी मैं जानता हूँ, फिर बच्चों को सुनाता हूँ तो बच्चे भी जानते हैं। कभी हम भी मास्टर फिर कालदर्शी बने हैं ना, बाप ने बुद्धि में नॉलेज दी है कि बच्चे अभी ये लास्ट चोला है, हा? लास्ट जन्म है, अंतिम, अभी यहाँ इससे देश है, देह के सर्विस में। इसीलिए कहते मैं आता ही अंत के समय हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बुद्धि योग निकलना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे भी नहीं है कि बीच में हूँ, अभी थोड़े जन्म पड़े हुए हो, नहीं, मैं आता ही लास्ट में, तो वैसे भी तुम्हारा अभी लास्ट है, छूटना ही है। परंतु क्यों नहीं अपने यहाँ हिम्मत और पुरुषार्थ अपने बल से छोड़ते हो, तो बुद्धि योग बल से छोड़ेंगे तो फिर तुमको हाँ उससे ऊंच प्राप्ति होगी। इसीलिए कहते हैं अभी बच्चे देश है, देह के सर्व संबंधों का अभी बुद्धि से आसक्ति हटाओ। क्योंकि हाँ ये कैसे हटाओ, जबकि अभी तुम्हारा 84 जन्मों का चक्कर भी पूरा हुआ है नहीं, यानी सभी जन्मों का, तो अभी जन्मों का चक्कर पूरा हुआ है, तो वैसे भी पूरा हुआ है, तो तुम बाकी बुद्धि से क्यों नहीं निकालते हो। इसीलिए बाप कहते हैं तू न निकालेंगे तो भी तेरा पूरा ही हुआ है, हा? अब तो तुमको ले ही जाना है मुझे, परंतु अगर तू हाँ बुद्धि से पहले से ही करेंगे तो उसका तुमको फायदा मिलेगा। तो अपनी आसक्ति ममत इससे निकाल। ये तो है रावण के राज्य का प्रॉपर्टी, ये सब पुराने उसकी है ना, उसके कर्मों के हिसाब से, विकारों के कर्मों के हिसाब से बने हुए, इसीलिए कहते हैं उसकी ये प्रॉपर्टी है ना, हा? ये देह भी उसकी अभी है, उनको दे दे, तू चल मेरे साथ, हा? मैं उनका हूँ जिसका हूँ, अभी बाप कहते हैं मेरे साथ चलो, तू मेरी प्रॉपर्टी हो, ये उनकी प्रॉपर्टी रावण की, ये दे दो उसको, उसमें तू अपनी आसक्ति न रखा। तो बाप कहते हैं अभी ये दे जो रावण की प्रॉपर्टी है, यानी उसके कर्मों के हिसाब से, विकर्मी खाते के कर्म के हिसाब से बना है, तो जो उसके हिसाब से बना है वो हिसाब खाता उसको दे दे, तू तो मेरी प्रॉपर्टी हो ना, तू अब मेरे साथ चल। तो अभी बाप कहते हैं बच्चे तुम मेरे साथ चलते, इसलिए बुद्धि अपनी इसे निकाल ले, इसे ममत निकाल दे, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये दे के सब संबंध, तेरी दे के संबंध ये सब उनके है, तो अभी उससे अपना ममत निकाल, ये सब उनके प्रॉपर्टी से जो इतना समय खाया उसका, हाँ पर उससे नतीजा तो तुमको दुखी भोगना पड़ा। इसीलिए कहते हैं अभी वो देश है तो देह के ये जो संबंध है ना, ये विकारी खाते के, इस सभी खाते से वो दे दे अभी रावण को, खत्म, वो भी खत्म होने का उसका राज, ये सब उससे तुम भी छोड़ दे उसको, अभी तू हाँ जहाँ की वो, अभी वो अपनी प्रॉपर्टी, हाँ फिर वो बनाएंगे मेरे खाते में आएंगे, तो मैं तुम आत्मा को जो फिर तेरा खाता बना करके दूंगा, वो सुख का संबंध दूंगा, उसके जो शरीर तुमको मिलेंगे ना फिर सदा सुख के, ये रावण के खाते के मिले हैं, पराया खाता है ना, तो पराया खाता तो उसे देखो देखो दुख मिला है, तो ये रावण के खाते के बने हुए है शरीर, वो मेरे खाते के बने हुए है, तो अभी मेरे खाते के बनाओ, तो अभी मेरे बनेंगे तब फिर मेरा खाता तुम बनाएंगे, फिर मेरे खाते से तो जो तुम खाते पीते रहेंगे और देह के संबंध भी रहेंगे सदा सुख के, कभी उसमें रोग नहीं होगा, कभी कोई दुख नहीं होगा, कोई अशांति नहीं होगी। इसीलिए बाप कहते हैं ये सब अभी पुराना देश है, देह का ये रावण का खाता, तो ये रावण की प्रॉपर्टी हो गई, वो दे दे उसको, छोड़ दे अभी उसकी, वो क्या करेंगे, हाँ इसने तो तुमको दुख दिया है ना, तो उसे अपनी आसक्ति अभी निकाल दे, अभी मेरी प्रॉपर्टी तुम बनो, और मेरी प्रॉपर्टी से तुमको जो शरीर सब सारी दुनिया दे के सुख के संबंध जो मिलेंगे, स्त्री पति सभी राजा प्रजा जो भी संबंध मिलेंगे ना सुख के, रावण के संबंध देखो कैसे है, दुख के लड़ते झगड़ते, प्रजा पर फलाना उसके ऊपर आ, सब लड़ते झगड़ते रहते हैं, बाप बेटा भी लड़ता है, स्त्री पति भी लड़ती है, तो प्रजा राजा प्रजा तो अभी है नहीं, मतलब जो भी है हा? जो राजा बन के नेताएं बैठे पर सब लड़ते झगड़ते रहते, आपस में नेताएं नेताओं में लड़ते हैं, नेता प्रजा से लड़ते हैं, प्रजा उनसे लड़ती है, सब लड़ते ही रहते हैं, कोई है सारा दिन देखो समाचार पर मारा मारी, लड़ाई झगड़े फलाने फलाने ये सब देखो क्या लगा। तो कहते ये देखो ये रावण का राज है ना, आप कहते हैं इनका सब छोरो ये अभी तुमको दुख देने वाले सब है, इसीलिए कहते हो उसे आसक्ति टोरो, अभी हम मेरे से लगाओ तो मेरे राज में, और मैं जो तुम्हारा भी अपना संबंध बनाता हूँ उसमें देखो कितना सुख है। तो मेरी प्रॉपर्टी में सुख है ना, रावण की प्रॉपर्टी में दुख है, तो अभी दे दो उसको, छोड़ो आसक्ति, अब चलो मेरे साथ, अब मैं फिर जो तुम्हारा बनाऊंगा वो सदा सुख का, क्या राय पसंद है ना, तो फिर चलो अब उनके साथ संबंध जोड़ो, रिलेशन कहते हैं मेरे से जोड़ो, और फिर मेरे रिलेशन से तुमको जो अपना रिलेशन भी बनेगा ना देह का वो भी अच्छे बनेंगे। तो पहले मेरे से रिलेशन जोड़ो तो देह के रिलेशन भी तुमको अच्छे मिलेंगे। अभी मेरे से रिलेशन तोड़ा है रावण से, विकारों से रखा है, तो विकारों के रिलेशन जो भी है वो सदा दुख के तुमको दुखी देंगे, और देख ही रहो दुखी पाते आए हो ना, तभी तो मुझे याद करते हैं। शुरू से आया रावण और शुरू से मुझे याद करना शुरू किया, भक्ति चली तभी जब थोड़ा भी रावण का अब पाँव ही चला, हाँ उसने अभी पाँव ही रखा तो तुम मुझे नहीं याद कर, पर तो उसी समय थोड़ा दुख था, वो पहला थोड़ा उसका भबका था, अच्छा तुमको सुखी रखा उसने, पीछे तो अभी उसकी भी ताकत चली गई है ना, तो अभी दुख होता जा रहा है। इसीलिए बाप कहते हैं वो पहले से पुकार तो तुमने उसी टाइम से ही शुरू कर दी, परंतु उसी समय फिर भी उसका पहला समय था कुछ सुख था, अभी तो उसका सार निकलता गया, उसकी भी ताकत अभी आ वो सुख की उसकी चली गई, बाकी आओ भबका उसका जोड़ है अभी, आज साइंस फलानी वो सब आ, इसीलिए मनुष्य समझते हैं कि अभी मनुष्य किया सब कुछ, अभी तो मिलना शुरू होता है, अभी तो दुनिया का पता चला है, अभी तो दुनिया खोज ली है, अभी तो दुनिया क्या है उसका मालूम, समझते अभी दुनिया को भोगने लगे हैं, इसीलिए समझते हैं आज देखो एरोप्लेन फलाने ये वो आ हवा में उड़ते हैं ये करते हैं, अभी तो सबके ऊपर राज करना शुरू करते हैं, हाँ चांद के ऊपर सूर्य के ऊपर हवा के ऊपर पानी के ऊपर सबके ऊपर। बाप कहते हैं बच्चे ये ऐसा नहीं है, ये तो तुम्हारे सब ऑर्डर में चलने वाले हैं, लेकिन वो कैसे चलेंगे जब तू अपने कायदे पर अथवा अपनी धारणाओं के ऊपर जो तुम्हारी है श्रेष्ठता उसी के ऊपर आएंगे, तो ये तो तुम्हारे सब सेवाधारी अपने आप तुम्हारे ऑर्डर में काम करेंगे। तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप समझाते हैं, तो ये सभी बुद्धि में रखने की है कि हम बाप से सभी, वो गीत भी है ना एक, तो देखो ये सब की वागे तेरे हाथ में होंगी, चांद की सूर्य की ये सब की वागे तेरे हाथ, पृथ्वी की आकाश सब तेरे हाथ में, तो अभी देखो ये सब वागे हाथ में मिलती है नहीं, पृथ्वी एक आकाश तो उसमें आ एक राज एक धर्म बहुत है, तो देखो टुकड़े टुकड़े कर दिया है नहीं, पृथ्वी एक लेकिन उसके टुकड़े टुकड़े, आकाश एक उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए क्योंकि बहुत हो गए, इसीलिए बाप कहती है एक, तो एक में एक ही होने से सदा सुखी रहेंगे, इसीलिए कहते देखो सबकी वागे तेरे हाथ में देता, तो ये है अभी अपने हाथ में। तो ये सभी चीजें अच्छी तरह से समझने की है, इसीलिए बाप बैठ करके अच्छी तरह से ये सभी बातें बुद्धि में डालते हैं, और कैसे अपनी दुनिया को पूरा सुखी बनाओ, अपने दुनिया से पूरा सुख लियो, उसी सभी बातों की पूरी तरकीब देते हैं। बाकी तो दुनिया की सब सजावट है, ये चांद सूर्य सितारे ये कोई दुनिया नहीं है, दुनिया एक है, ये उनके लिए सब, जैसे ये घर है ना देखो इसमें बिजली है इसमें सजावट होती है, जो अच्छा शाहूकार आदमी है तो अच्छा फर्नीचर सजावट है सब रखेंगे, और इसी तरह से यहाँ जितना जितना होता है ये भी ऐसा ही है, जितने हम देखो पहले सतयुग है हाँ अच्छे हम है तो हमारे घर की भी सजावट अच्छी है, पक्षी अच्छी पशु अच्छा है हाँ, जिसे और वनस्पति भाई जो भी वृक्ष आदि सब फल फूल सब हमको अच्छे अच्छे सभी अच्छे, तो उसी टाइम वहाँ पर बाकी ये तो बत्तियां हैं चांद और ये न होती तो रोशनी और दिन और रात और ये सभी कैसे होता है, तो ये सभी है, तो ये घर की सजावट है, बाकी ये नहीं को घर है, घर तो यही है वर्ल्ड जो है इसको कहेंगे, लेकिन उसमें जैसे घर में बाकी सजावट होती है वैसे फर्नीचर होते हैं ना सब, ये इसी तरीके से ये सब घर की, बाकी ऐसे नहीं इसमें दुनियाएं हैं, न्याय में कोई दुनियाएं मनुष्य रहते हैं या मनुष्य कोई दुनिया चलती है नहीं, ये तो बेचारे खोजते खोजते इनकी दुनियाएं खत्म हो जाएंगी ना, खोजते खोजते खत्म हो जाएंगी, बस नतीजा यही है, बाकी ऐसे नहीं इसको कुछ खोज पाना है या इनों में कोई दुनिया इनको मिलनी है ही नहीं, तो मिलेंगी कहाँ से, तो ये सभी चीजें अच्छी तरह से समझने की है जो बाप बैठ करके समझाते हैं। और इसका सारा चक्कर कैसा चलता है, ये कैसा रेगुलर इसका अपना टाइम का और इसी टाइम का चक्कर होकर के फिर कैसा रिपीट होता है, ये भी बातें समझने की, कि हू बहू सर्किल इनका फिर हू बहू रिपीट होता है। इसीलिए कहते हैं ये तुम और हम अभी भी है फिर भी होंगे हाँ, पर तो कभी 5000 बरस के बाद फिर हू बहू। देखो ये आज का हू बहू जो हम एक एक अक्षर कहते हैं, और ये भी फिलोसॉफी बड़ी डीप है जिसको समझना है कि हू बहू फिर वही रिपीट होता है। तो हू बहू देखा अब हमारा ये हाथ, पर तो नहीं ये जैसे ड्रामा शूट किया हुआ होता है ना, तो ड्रामा शूट किया हुआ होता है, फिल्म अगर चलेंगी तो जिस टाइम चलेंगी जो सीन होंगी उसमें किसी का हाथ ऐसे चला तो वो भी उसी टाइम पर फिर हू बहू ऐसे ही रिपीट होगा, क्योंकि एक बार शूट हुई गई नहीं वो फिर उसका हू बहू चलेगा, उसमें जरा भी फर्क नहीं। इसलिए ये बातें बहुत समझने की, इसमें बड़ा डीप बुद्धि चाहिए।